फिर इससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो एक छोटी बात घड़कर अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की वाकई आयात को झूठा करार दे। बात यकीन न हुला युफलिहुल मुजरिमून, यकीनन मुजरिम कभी फलाह नहीं पाते। नोट कीजिएगा यहाँ मुजरिम कहा क्रिमिनल का है, सिनर नहीं कहा, गुनाहगार नहीं, क्योंकि जब लोग बड़े बड़े क्राइम्स करते हैं अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम से अपोजिट होकर तो फिर वो अल्लाह के मुजरिम है। दुनिया की अदालतें मुजरिमों के साथ क्या करती हैं, जेल में भेजती है ना, तो जहन्नम अल्लाह की जेल है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम मुजरिम बनकर नहीं मोमिन बनकर कल अल्लाह के पास आए। वयाबुदून मिन दूनिल्लाही, ये लोग अल्लाह के सिवा इनकी परस्तिश कर रहे हैं जो ना इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना नफा, और कहते ये हैं कि ये अल्लाह के हम हमारे सिफारशी हैं। ऐ नबी इनसे कहो क्या तुम अल्लाह को इस बात की खबर देते हो जिसे ना वो आसमानों में जानता है ना जमीन में, पाक है और बालों पर तरह इस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। इब्तदान सारे इंसान एक ही उम्मत थे, बाद में उन्होंने मुख्तलिफ अकीदे और मसलक बना लिए। इसको हाईलाइट करें, जो बंदा आपको कहे ना कि मसलक जरूर होना चाहिए उनको याद दिखा दें। जो कहते हैं तुम्हारी कोई जमात कोई गिरोह कोई फिरका जरूर होना चाहिए, आप उनसे इस आयत का मतलब पूछ रहे हैं। अल्लाह कहते हैं सब एक थे और सब मुस्लिम थे, मवाहिद थे। इसमें एक और चीज का भी इरादा है, जो लोग ये सोचते हैं ना कि किस तरह से लोग दुनिया में पहले इख्तलाफात में थे फिर एक हुए, हालांकि इस्लाम सबसे ओल्ड रिलीजन है। कई लोग ये कहते हैं इस्लाम इज द न्यू रिलीजन, वो ये सोचते हैं कि इस्लाम मोहम्मद सल्लम के आने से शुरू हुआ, हालांकि ये बात इससे ऑपोजिट है कि इस्लाम का सिलसिला मोहम्मद सल्लम पे खत्म हुआ। आप इसको एक ट्रेन के साथ रिलेट कीजिए, एक ट्रेन की डिफरेंट बोगियां हैं, डब्बे होते हैं ना उसके अंदर, तो 300 बोगियां हो अगर बिलफर्ज 313 या वॉट है, पहली बोगी में अगर हजरत नूह अलैहि सलाम है ना, तो सेकंड में चलते चलते इब्राहिम, फिर इसी तरह से हजरत इस्माइल मूसा ईसा और मोहम्मद सल्लम उस ट्रेन की आखिरी बोगी है। तो ये इस्लाम का सिलसिला नबी सल्लम से पहले से चल रहा था। फिर फरमाया अगर तेरे रब की तरफ से ये बात पहले से तय न कर ली गई होती तो जिस चीज के बारे में ये इख्तलाफ कर रही इसका फैसला कर दिया जाता। और ये जो वो कहते हैं कि इस नबी पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई, तो इनसे कहो कि गैब का मालिक और मुख्तार तो अल्लाह ही है। अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। लोगों का हाल ये है कि एक मुसीबत के बाद जब हम इनको रहमत का मजा चखाते हैं तो फौरन ही वो हमारी निशानियों के मुकाबले में चालबाजियां शुरू कर देता, ये भी एक आदत है। गुर्बत थी तो रब से ताल्लुक बड़ा अच्छा था, माल नहीं था तो खुश थे अल्लाह के साथ थे, तकलीफ थी तो बहुत अल्लाह से रोज चलते थे, तस्बीहें में निकल आई जाए नमाज भी खुल गई, जो ही तकलीफ खत्म हुई तो फिर वापिस वही होशियारियां। देखिए दूसरी दफा ये मजमून आ रहा है और मैं और आप इसकी रोशनी में अपने रवैयों को चेक करें। एक क्वेश्चन करती हूँ, वो आपकी सोच को इंशाल्लाह फोकस कर देगा। खुशियों के वक्त मेरा क्या रवैया होता और तकलीफों में क्या होता, ये दो चीजें आपको आपके ईमान का टेम्परेचर बताएंगी। क्योंकि हदीस में आता है अजबुल अमरुल मोमिन, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, खुशी मिले तो शुक्र करता है और शुक्र का बदला जन्नत है, तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है और सब्र का बदला जन्नत है। और मुझे ऐसे लगता है कि शुक्र और सब्र जन्नत में जाने के दो दरवाजे हैं, या उस दरवाजे से दाखिल हो जाओ या इससे दाखिल हो जाओ, अंदर जन्नत है। जिंदगी में इस चीज को अपने लिए बुनियाद बना लें अपने अमल की। कोई भी हाल हो मेरा, मैंने अल्लाह की नाफरमानियां नहीं करनी। और आयतों के साथ चल्लाकियां क्या हैं, होशियारियां के आयतों को बदल दो। कार्ड पे लिखते हैं निकाह मिन सुन्नती, अब तो वो भी नहीं लिखते मेरा ख्याल है, लेकिन किसी दौर में लोग लिखते थे निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रगिबन सुन्नती फलही समिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह फेरा वो मुझसे नहीं। और उसके बाद उस कार्ड के दावत नामे के बाद जब लोग आते हैं तो उसे एक महफिल में अल्लाह के नबी की इतनी सुन्नतें टूटती हैं। कार्ड पे क्यों लिख ली आयत और हदीस या कुछ भी मफहूम, कि जरा बरकत तो हो जाए। जब अगर निकाल ला के नबी की सुन्नत है, एक सुन्नत तो पूरी की, तो उसको पूरा करने में कितनी सुन्नतों को ज़िबा किया। देखिए कभी बहुत लिबरल से लिबरल बाप को भी कोई कह दे क्या जरूरत है मौलवी साहब की, भेज तो ऐसी बच्ची को लड़के के साथ, इतनी और रस्में शादी में कि निकाह का वक्त ही नहीं है, कोई भेजता। मेरा ले बिगड़े से बिगड़ा शख्स भी कहेगा कि मैं कभी भी नहीं भेजू, तो क्या बुला के मौलवी साहब से कबूल ही जाब कबूल है कबूल है कबूल करा के एक बच्ची अजनबी के हाथ भेज दी जाती है। क्या है सुन्नत है। तो जहां इतनी सी बात आप गवारा नहीं कर सके सुन्नत के खिलाफ, तो क्या बाकी चीजों में आप और मैं इसका सोच सकते हैं कि अल्लाह के नबी इस तरीके से अपने फंक्शंस और अपने प्रोग्राम और शादियां ब्याह करते होंगे जैसे आज उम्मत मुस्लिमा ने करना शुरू कर दिया। यही बात जहां बताई जा रही है कि आयतों के साथ जब हम इस तरह का मजाक करते हैं, आधी अपनी मर्जी का दीन मान लेते हैं और आधा नहीं मानते। कोई कहे वलीमा ना करो गुस्सा करेंगे, कोई कहे मेहंदी ना करो तो गुस्सा करेंगे, आपस में बात नहीं। यदि सुन्नतों को खुद साख्ता रस्मों के बराबर खड़ा कर दिया तो अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि वो हमारी इसलाह कर दे। फिर फरमाए वो अल्लाह ही है जो तुमको खुश्की और तरी में चलाता है, चुनाचे जब तुम कश्तियों में सवार होकर बादे मवाफिक पर, यानी बहुत खूबसूरत हवा थी, सूटेबल थी, जिस रुख पे चलनी थी वैसे चल रही है, जब तुम कश्तियों में सवार होकर बादे मवाफिक पर फरहों शादा सफर कर रहे होते हो, और फिर यकायक बादे मुखालिफ का जोर होता है, अपोजिट विंड्स चलती हैं, अगेंस्ट चलती हैं जो तुम्हारी कश्ती के, और हर तरफ से मौजों के थपेड़े लगने लगते हैं और मुसाफिर समझ जाते हैं कि तूफान में घिर गए। इस वक्त सब अपने दीन को अल्लाह ही के लिए खालिस करके इससे दुआएं मांगने लगते हैं। क्या कहते हैं, इसको हाईलाइट कीजिएगा, लैन अंजैतना मिन हाज़िही, अगर तूने हमको इस बला से निजात दे दी, अगर तूने हमको इस बला से निजात दे दी तो हम शुक्र गुजार बंदे बनेंगे। बड़े मीसने और मस्कीन से बन के ये दुआएं करते हैं, मगर जब वो इनको बचा लेता है तो फिर वही लोग हक से मुनहरिफ होकर, यानी हक से हटकर जमीन में बगावत करने लगते हैं। नोट कीजिए लफ्ज बगावत को, क्योंकि खुशियों के मौके पे बगावतें आम हैं, बागी जिंदगी हो जाती है, ऐसे लगने लगता है कि इसके बाद अब अल्लाह ताला से किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। तो अल्लाह ताला कहते हैं, या यूहन्ना सुन्ना मैं बग्जुकुम अला अन्फुसिकुम, ए लोगो तुम्हारी ये बगावत तुम्हारे ही खिलाफ पड़ रही है। जो किसी मुल्क के कानून में बगावत करता है, एजिटेशन करता है, उसकी सजा उसको खुद भुगतनी पड़ती है। बाकी रह गई ये जो सारी सरकशियां, उसकी वजह क्या, मताल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी के चंद रोजा मजे हैं, लूट लो, फिर हमारी तरफ पलट कर आना है। इस वक्त हम तुमको बता देंगे कि तुम क्या कुछ कर रहे थे। इसको हाईलाइट करें, आज भी पता है हमें लेकिन कल ज्यादा अच्छी तरह पता चलेगा। आप देखिए कि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा तूफान जरूर आता है, चाहे वो औलाद की तरफ से मुसीबत की सूरत में आ जाए, शोहर बीवी का झगड़ा हो, कोई खानदानी मामला हो, ऐसे वक्त जिसमें हमें रब याद आता है, फिर हम उस वक्त दुआएं करते हैं, अल्लाह इस मुश्किल से बस निकाल दे। फिर देखना, एक सहाबी थे करमा, अबू जहल के बेटे थे, जब मक्का फतह हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब के लिए आम माफी का ऐलान कर दिया, लेकिन चंद लोग जो आज के दौर में आप कह लीजिए कि बागी थे या जिन्होंने बहुत सारे कानून तोड़े हुए थे, उनके लिए आपने कहा कि वो तुम्हें जहां मिले उनको पकड़ के लाओ, उसी में करमा का नाम भी था। इनकी बीवी ने इनको मशवरा दिया कि यहां रहेंगे, पकड़े जाएंगे, यहां से चलते हैं, निकले बाहर चल पड़े, जद्दा के रास्ते गए, वहां एक कश्ती तैयार थी हबशा जाने के लिए, उसमें बैठ गए कि चलो मैं इस मुल्क से भाग जाता हूं। खैर जब भाग के बीच में पहुंचे तो तूफान आ गया। अब मक्का के लोगों का रुझान क्या था कि जब समंदरों में तूफान आता और कश्तियां डोलती तो उस वक्त फिर कहते थे कि देखो ये जमीन वाली देवियां और बुत हमारे काम नहीं आएंगी, अब ऊपर वाले को पुकारो। उन्होंने वहां ये बात शुरू कर दी, जो ही उन्होंने ये बात की इकरमा का दिल खुल गया, का यही बात तो अल्लाह का बंदा कहता है कि जो समंदर में नहीं तुम्हारी मदद को आ सकती देवियां, वो जमीन पे तुम्हारी मदद कहां करेंगी, और जो रब समंदरों की गहराइयों में तुम्हें बचा सकता है क्या वो जमीन पे नहीं बचाएगा। बस इन्होंने चुपके से अपने रब से बात की, क्या रब मैं तुझे पुकारता हूं, अगर तू मुझे इससे निजात दे दे तो अब आगे नहीं जाऊंगा पीछे जाऊंगा। और वही हुआ, अल्लाह के हुक्म से समंदर में तूफान थम गया, अब ये वहां से पीछे आए और अल्लाह के नबी सल्लम के पास आके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का। जिंदगी में ऐसे तूफान और सदमे रहमत बन जाते हैं जो हमारे कदमों को पलट कर दीन की तरफ ले आते हैं। सरकश होते, बाही होते हैं इंसान, रिबेलियस होते हैं, एक तकलीफ आती है, कोई बीमारी आई, बेड रिडन हो गए, कमर में चोट पड़ गई, उठ ही नहीं सके, झुक ही नहीं सके, बैठ ही नहीं सके, तकलीफ में अल्लाह ला के ऐसे हैंड टू माउथ करके बिठा देता है, तो ये बुरी बात नहीं है, ये अल्लाह का फजल है। देखिए वो सेहत, जवानी, माल जो हमें बागी करते, रिबेलियस करते, वो हमारे लिए जहरे कातिल है, और वो तकलीफें और मुसीबतें हमारी उस्ताद है जो हमें अल्लाह से जोड़ दें। शर्त एक है कि हम उनसे सबक हासिल कर लें। اب اگلی آیت میں بہت خوبصورت طریقے سے دنیا کی حقیقت ہے. ان آیتوں پر ایک لیکچر بھی ہے, میرا اپنا فیورٹ لیکچر ہے, اور زندگی ایک ڈھلتا سایہ پرانے لیکچرز میں تھا, آج بھی مجھے اس کا ایک ایک لفظ یاد ہے. اگر آپ کو بھیج سکیں یہ لوگ تو ای میل میں بھیج دیں گے. اور کل ہم نے ایک درس شام کو کیا الحمدللہ مسجد میں, تو یہ آیتیں نہیں لی تھی, سورہ حدید کی لی تھی, لیکن ٹاپک یہی تھا, تو وہ بھی اچھے ماحول میں ہوا, تو بات دل میں اتری. لیکن کم از کم ان کو ضرور بھیجیے گا, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اب اس آیت کو آپ دل پہ لیں, اس وقت اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں, لیکن آپ اس ٹاپک کو ذہن میں رکھیں, زندگی ایک ڈھلتا سایہ, لائف از اے فیڈنگ شیڈو. ایک دن کو سوچ لیجئے, صبح کیسے آہستہ آہستہ سورج چڑھتا ہے, اور جب سورج چڑھ کے پوری پیک پہ آتا ہے ہر چیز کھل کے دکھتی ہے, اور اس کے بعد پھر سائے ڈھلنے شروع ہوتے ہیں, اور شام کے قریب ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز جا رہی ہے. یہی ہے میری اور آپ کی زندگی کی کہانی. انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناہ من السماء, فرمایا دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو. 3 سیکنڈ سوچے, دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہو. ٹائم ہی نہیں, وقت ہی نہیں ان آیتوں کو پڑھنے کا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا, تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور انسان جسے آدمی اور جانور سب کھاتے خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سبری کھڑی تھیں, اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں. یہ وہ دور ہوتا ہے جب بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں, مسیں بھگتنے لگتی ہیں, لڑکے جوان ہو رہے ہیں, جسم پہ بال آ رہے ہیں, تھوڑی تھوڑی مونچھیں داڑھی, تو ماں باپ کہتے ہیں ماشاء اللہ منا بڑا ہو گیا, اب بیٹا بڑا ہو رہا ہے, امیدیں لگ جاتی ہیں, چلو اب ہاتھ بٹائے گا, چلو اب اس کی شادی کریں گے. اور حقیقت ہے کہ ایسی عمر میں بچے بہت پیارے لگتے ہیں, شکل سے تو ویسے عجیب و غریب ہو جاتے ہیں, بڑھنے چڑھنے کا موقع ہوتا ہے, کچھ بھی اس میں نہیں ایسی بات لگتی, لیکن ماں باپ کی امیدیں اٹھتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کس وقت لگتا ہے کہ بس اب ہم ان سے فائدہ اٹھائیں, پھر گھبرو جوان بن جاتے ہیں, ایسے جوان صحت مند, پھر جاب بھی مل جاتی ہے, پھر ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں, پھر کچھ بھی ہوتا ہے, اور یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا. اللہ سب کو محفوظ رکھے, اللہ آپ سب کے بچوں کی حفاظت کرے, کبھی کسی کو اپنے جوان بچے کی موت نہ دکھائے, لیکن یہ جوان بچے کی موت کی خبر ہے. ادھر کھڑی فصل کٹ رہی ہے, ایک ہوتی فصل اپنے دور میں جا کر بھوسی بن کے کٹے, وہ تو فطرت کا اصول ہے, بوڑھوں نے تو دنیا سے جانا ہی ہے, اور وہ تیار بھی ہوتے ہیں کسی طرح سے. لیکن جب جوانی میں کسی بچے کو بوڑھے باپ کے کندھوں پہ لیٹا دیکھے کوئی, تو سبھی رو پڑتے ہیں, لیکن یہ ممکن ہے, اٹس کوائٹ پاسبل. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب جوانوں کی موتیں کثرت سے ہوں گی. آج بھی آپ دیکھیں بوڑھے کو ہارٹ اٹیک ہوگا نا تو وہ بچ جائے گا, جوان کو ہوتا ہے وہ نہیں بچتا, کیونکہ جسم کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رات یا دن ہمارا حکم آ گیا, اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کہ کل تک وہاں کچھ رہا تھا, وہاں کچھ تھا ہی نہیں, سب ختم. پھر کیا اداسی چھاتی ہے, کبھی میت والے گھر کی خاموشی سے کوئی پوچھے کیا آج اتنی خاموشی کیوں ہے, اس وقت کچھ اچھا نہیں لگتا. سوچیے اتا ہم رونا لئی لنا نہارا, پھر اس وقت پوچھئے پریشر کیا اچھا, پیئر پریشر. میت والے گھر میں کبھی پوچھئے لوگوں سے ڈرنا چاہیے, نہیں ڈرنا چاہیے, لوگوں کے پریشر میں آ کے اللہ کو ناراض کرنا ہے, نہیں. ایمان والے پر سب سے بڑا پریشر اللہ کا پریشر ہوتا ہے, پیپل پریشر نہیں, گاڈ پریشر. تو یہ مت کہیے کہ اگر میں مر گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا, یہ کہیے کہ اگر یہ مر گئے تو ان کا کیا ہوگا. جوانوں کو سوچنے کا ہے, یاد ہے کسی لمحے جا سکتے ہیں, اور یاد رکھیے کہ آج اور میں اگر اس دنیا میں کامیاب ہو بھی گئے, جوان ہونے تک بچے نے پڑھ لیا, گریڈز لے لیے, اے لے لیے, جاب مل گئی, قبر میں ساتھ کیا جائے گا, خالی ہاتھ. مثلا دیکھیے کہ پاکستان میں ایک شخص کروڑ پتی تھا, روپے کو ڈالر میں نہیں بدلا, اور امریکہ آ گیا, کیا یہاں وہ ایک چائے کا کپ پی سکتا ہے؟ عام دکاندار کھوکھے والا اسے روپیہ شاید نہیں لے گا. آج تو کئی سہولتیں آ گئیں کارڈز کی, امیجن کیجئے کہ اگر کرنسی کو اس ملک کی کرنسی میں کنورٹ نہ کریں تو ایک چائے کا کپ نہیں پی سکتے. اسی طرح اگر آج میں نے اور آپ نے اپنے ایسٹس کو اپنے بچوں کو، اپنے گاڑیوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی نعمتوں کو نیکیوں میں نہ بدلا تو کل قیامت کے دن کنگلے ہوں گے، بینکرپٹڈ ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا. اور کوئی یہ کہہ دے میں ڈالر نہیں لیتا، ہاں اس پہ تصویر بنی ہوئی ہے اور مجھے وہ تصویر نہیں پسند، تو کیا امریکہ میں آ کے وہ سروائیو کرے گا؟ وہ آپ کو نوٹ پسند ہے کہ نہیں پسند، اس کا کلر پسند ہے کہ نہیں پسند، آپ کو کرنا پڑے گا اس کو کنورٹ. اسی طرح مجھے اور آپ کو اور ہمارے بچوں کو اسلام کی کوئی نیکی چیز پسند ہے کہ نہیں؟ وی لائک اٹ اور وی ناٹ. یہی کرنی ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ چوائس نہیں دی. اور یقین کیجئے کہ اگر ہم اس دنیا سے صرف 20-30% ڈیٹیچ ہو جائے نا تو ہم آخرت سے اٹیچ ہو جائیں گے. جو لوگ آج اس دنیا سے 100% اٹیچ ہے نا، ان کی موت بھی بڑی سخت ہوتی ہے، ان کو رونا آئے گا دنیا چھوڑتے ہوئے، کیونکہ چھوڑے نہیں. آپ گم کو دیکھیں نا، چنگم کہیں لگی ہو، بالوں میں لگ جائے اور آپ اس گم کو اتاریں، چیخیں نکل جائیں گی. جتنے بالوں پہ لگی ہوئی ہے نا زیادہ، اتنی تکلیف ہوگی. اور اگر ایک ہی بال کو لگی ہو، ہلکی سی سی ہوگی، اس بال سے آپ چھڑا لیں گے. یہ دنیا چنگم کی طرح ہمیں چپٹتی ہے، اور اس طرح سے پھر ہم اس دنیا کے دھوکے میں آتے ہیں. ایسے لگتا ہے یہی رہیں گے، اور یکا یک اللہ کے حکم آ جاتے ہیں، اور ایسے غارت کرتی ہے گویا کہ کچھ تھا ہی نہیں. فرمایا کذالک نفصل الایات لقوم یتفکرون. اسی طرح ہم کھول کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. میں اور آپ سوچنے سمجھنے والے ہیں الحمدللہ، ہم ڈل لوگ تو نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں بہت انٹیلیجنسی دی، انٹلیکچوئل ہے، کیا اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی؟